ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम सातवां स्कंद सातवां अध्याय। अध्याय का नाम है प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा। श्लोक संख्या 34। निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान् वीर्याणि लीला तनुभिकृतानि यदाति हर्षोत्पुलकाशु गद्गदम् प्रोत कण्ठुद्गायति रोति नृत्यति लेश। धन्यवाद। निशम्य सुनकर कर्माणि दिव्य कार्यकलापों को गुणान आध्यात्मिक गुणों का अतुल्यान असामान्य जो सामान्य पुरुष में नहीं दिखते वीर्याणि अत्यंत शक्तिमान लीला तनु भी अनेक लीला स्वरूपों के द्वारा कृतानि किए गए यदा जब अति हर्ष अति प्रसन्नता के कारण उत्पुलक रोमांच अश्रु आंखों में आंसू गदगदम अवरत कंठ प्रोत कंठ खुले स्वर से उद्गायति ऊंचे स्वर से कीर्तन करता है रौति रोता है नृत्यति नाचता है। अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जो भक्ति के पद पर आसीन हो जाता है वह निश्चय ही इंद्रियों का नियंत्रक है और इस तरह वह एक मुक्त पुरुष हो जाता है। जब ऐसा मुक्त पुरुष या शुद्ध भक्त विभिन्न लीलाएं करने के लिए भगवान के अवतारों के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों के विषय में सुनता है तो उसके शरीर में रोमांच हो आता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और आध्यात्मिक अनुभूति के कारण उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है। कभी वह नाचता है तो कभी जोर जोर से गाता है और कभी रोने लगता है। इस प्रकार वह अपने दिव्य हर्ष को व्यक्त करता है। दोबारा बोलेंगे शायद आपके साथ ऐसा ना हो जाए। तो तात्पर्य सुनिए, भगवान के कार्यकलाप असामान्य होते हैं। उदाहरणार्थ जब वे रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने समुद्र पर सेतु बनाने का असामान्य कार्य किया। इसी प्रकार जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो उन्होंने 7 वर्ष की ही अवस्था में गोवर्धन पर्वत उठा लिया। ये असामान्य कार्य हैं। मूर्ख तथा धूर्त लोग जो दिव्य पद को प्राप्त नहीं हुए होते वे भगवान के इन सामान्य कार्यों को मिथ्या या काल्पनिक मानते हैं, किंतु जब मुक्त व्यक्ति या भक्त भगवान के इन असामान्य कार्यकलापों के विषय में सुनता है तो वह तुरंत ही आनंद विभोर हो उठता है और कीर्तन करने नाचने तथा जोर जोर से प्रसन्न होकर रोने के लक्षण प्रकट करता है। भक्त तथा अभक्त के बीच यही अंतर है। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पर इस अध्याय का नाम है प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा। तो पिछले अध्याय में प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों को उपदेश दिया, काफ़ी सुंदर उपदेश दिया। तो उनके सहपाठी ने पूछा, ये ज्ञान कहाँ से मिला तुम्हें? तो बोला, नारद मुनि ने मुझे ज्ञान दिया। तो सहपाठी ने पूछा कि तुम्हें बाहर तो जाने का मौका मिलता नहीं और यहाँ नारद मुनि आते नहीं, ना ही उनके कोई और कोई वैष्णव आता है यहाँ पे, तो ये कैसे संभव हुआ? तो फिर प्रहलाद महाराज ने बताना शुरू किया कि किस ढंग से उनकी माँ जब गर्भवती थी, वो प्रहलाद इंद्र जब उनको लेके जा रहे थे तो नारद मुनि बीच में आए, उन्होंने उनको रोका और फिर अपने आश्रम में ले गए और करुणावश उन्होंने उनको पूरा भागवतम का ज्ञान दिया। तो वो जो ज्ञान था प्रहलाद महाराज ने बताया अपने सहपाठियों को कि अगर तुम मुझ में श्रद्धा रखोगे तो तुम्हें भी वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो हम सब भी अगर श्रद्धा रखें श्रीला प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में तो हमें भी वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जो कि नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज को माँ के घर में दिया था। ये गुरु शिष्य परंपरा की शक्ति है। तो उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया। तो इस श्लोक में, इस अध्याय में, क्षमा करें, लगभग 50 से भी ऊपर श्लोक हैं और इन सभी श्लोकों में प्रहलाद महाराज अधिकांशतः शरीर और आत्मा के भेद का वर्णन करते हैं। पिछले काफ़ी श्लोकों में उन्होंने सांख्ययोग का वर्णन किया कि आत्मा को कैसे भौतिक तत्वों के बीच में से पहचानना है, नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। फिर उन्होंने बाद में भक्ति योग का वर्णन किया श्लोक संख्या 29 से, जो कि पिछले शनिवार को आई थिंक राधेश्याम प्रभु जी ने लिया था। तो अब से भक्ति योग का वर्णन शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने भक्ति के अलग अलग स्टेजेस का वर्णन किया 30, 31, 32, 33 श्लोक में। 34 और 35 श्लोक तक प्रहलाद महाराज उनको भाव की स्टेज पर ले आए। इसके बाद से आगे फिर श्लोकों में वो दोबारा से उनको बताएंगे कि आप अनर्थ निवृत्ति कीजिए और क्यों नहीं आप भगवान की शरण ग्रहण करते इत्यादि। तो खाली 2 श्लोक ही हैं भाव के, तो वो आज मेरा ही नंबर आ गया भाव। तो जैसे बता रहे हैं कि जब कोई शुद्ध भक्त भगवान की अवतारों के दिव्य गुणों का कार्यकलाप के विषय में सुनता है तो उसके शरीर में रोमांच उत्पन्न होता है, कंपकंपी होती है। तो मुझे भी कंपकंपी हो रही थी, कल मैं श्लोक प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे भगवत गीता के अर्जुन के पहले अध्याय का, जो अर्जुन भगवान को कहते हैं वेप थुश्च शरीर में रोम हर्षश्च जायते सीदंती गम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति, है ना, मेरा सारा शरीर जल रहा है, मेरा मुख सूख रहा है, हाथ से भागवतम स्लिप हो रही है, कंपन हो रही है। क्योंकि जो व्यक्ति भी श्रद्धा के स्तर पे है या साधु संगठन धृति के स्तर पे है, भाव का श्लोक आ गया, भाव में क्या क्या होता है, कैसे कंपन होती है, सुनने से क्या प्रभाव होता है। तो सोचा क्या किया जाए, तो ठीक है जितनी अपनी समझ है, क्योंकि आपका, और फिर मैं सोचा था मेरा कितना सौभाग्य है कि जैसे एक साधारण दुनिया में किसी प्रिपरेटरी स्कूल में जाने वाले बच्चे से पूछा जाए, अच्छा बच्चे बताओ PhD के एग्ज़ाम में कैसे होता है, तो बोले क्या बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर हमें व्यास आसन में बैठ कर भाव की स्टेज की स्थिति में बोलने का अवसर मिल रहा है। मेरा तो सौभाग्य हो सकता है, लेकिन आप लोगों का भी बड़ा दुर्भाग्य होगा कि कोई रियलाइजेशन तो नहीं होंगी, फिर भी लेट्स ट्राई टू डू आवर बेस्ट। आप सब कृपा दीजिए, प्रभुपाद जी की कृपा की याचना करते हुए सभी वैष्णवों से। तो इसमें बहुत अच्छे ढंग से प्रभुपाद जी बता रहे हैं, और प्रभुपाद जी ने इस अनुवाद की जो पहली लाइन लिखी है, जो भक्ति के पद पर आसीन होता है वह निश्चय ही इंद्रियों का नियंत्रक है और इस तरह वह एक मुक्त पुरुष हो जाता है। तो ये इस श्लोक में कहीं नहीं आता ये वाक्य, निशम्य कर्माणि गुणानि तुल्यानि, सुनते हैं जब कर्मों के अतुल्य कर्म भगवान के गुणों के कर्मों क्रियाकलापों को, तो ये वाक्य इस श्लोक में कहीं नहीं आता। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि आम व्यक्ति के साथ, आम व्यक्ति को भगवान की लीलाएं सुनने से ये लक्षण उत्पन्न नहीं होंगे। जो व्यक्ति भक्ति के पद पर आसीन होता है वह निश्चय ही इंद्रियों का नियंत्रक है और इस तरह वह एक मुक्त पुरुष हो जाता है। जब ऐसा मुक्त पुरुष या शुद्ध भक्त विभिन्न लीलाएं करने के लिए भगवान के अवतारों के दिव्य गुणों कार्यकलापों के विषय में सुनता है तो उसके शरीर में रोमांच हो जाता है। प्रभुपाद ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पिछले श्लोक में बताया गया था इन उपर्युक्त कार्यकलापों द्वारा मनुष्य शत्रुओं काम क्रोध लोह मोह मद ईर्ष्या के प्रभावों को दमन करने में समर्थ होता है और ऐसा कर लेने पर वह भगवान की सेवा कर सकता है। इस प्रकार वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेमा भक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। पिछले श्लोक में बताया गया है कि भक्त लगातार भक्ति के विधियों में जुड़कर अपने इन 6 शत्रुओं पर दमन कर लेता है और इससे वो जितेंद्री बन जाता है, गोस्वामी बन जाता है। और जब ऐसा मुक्त पुरुष जिसने अपने मन और इंद्रियों को संयम कर लिया है, जब वो भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है तब उसके शरीर में रोमांच और हर्ष उत्पन्न होता है। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि हमें तुरंत ये क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसमें श्रीला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज और भक्तिविनोद ठाकुर जी बहुत ध्यान रखते थे, क्योंकि ऐसी बातों को सुनकर अक्सर लोग सहज
हो जाते हैं और वो एक झूठा बोल लेने के लिए समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वो ऐसे लक्षणों को उत्पन्न कर सकते हैं। भागवतम में कई स्थानों में इस प्रकार के भाव का वर्णन हुआ है। राजा निमि जब नव योगेंद्रों से मिलते हैं, 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 40वां श्लोक, एवं व्रता स्व प्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्चै हसत्थ योरोदति रोति गाया त्युन्माद अवन्यत्यति लोक भाया। भगवान के पवित्र नाम व कीर्तन करने से मनुष्य भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तब भक्त भगवान के नित्य दासी रूपी व्रत में स्थिर होकर और क्रमशः भगवान के किसी एक नाम तथा रूप के प्रति अत्यधिक अनुरक्त हो जाता है। जब उसका हृदय भाव में प्रेम से द्रवित होता है तो वह जोर जोर से हंसता है या रोता है अथवा चिल्लाता है। कभी कभी वह उन्मत्त की तरह गाता और नाचता है क्योंकि वह जनमत के प्रति उदासीन रहता है। जनमत का कोई उसको लेना देना नहीं, लोग क्या सोच रहे हैं। भगवान कपिल भी 3 स्कंद में बताते हैं कि भगवत धाम जाने की क्या योग्यता है, कि व्यक्ति एक बिल्कुल शराबी की तरह हो, उसको कुछ नहीं पता उसने कौन से कपड़े डाल रखे हैं, डाले हुए हैं नहीं डाले हुए, आसपास क्या वातावरण है, पूर्ण रूप से शुद्ध। यानी कि या तो हमें इस भौतिक जगत में पागल होना पड़ेगा या फिर आध्यात्मिक जगत में भगवान के प्रेम के लिए पागल होना पड़ेगा। बिल्कुल पागल होके नाचता है, गाता है, रोता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक को भागवतम का सार बताया है, 11-40। तो इसके तात्पर्य में शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं कि ऐसा कैसे होता है। उन्होंने बोला कि समझ लीजिए एक भक्त थे जो कि भगवान की बाल लीला सुन रहे थे, कि एक वृद्ध गोपिका थी जिसका नाम था जरती। उसके घर में कृष्ण कन्हैया आए माखन चुराने के लिए, तो उन्होंने जब लीला सुनी कि भगवान माखन चुराने आए हैं और इस गोपी को मालूम चल गया, बोले ठहर अभी आती हूँ, आज भी मजा चखाऊंगी, खबरदार जो मक्खन को उठाया तूने। तो वो भागती है जैसे ही, तो कृष्ण अपने आप को छुपा लेते हैं। तो ये लीला सुनकर ये भक्त जो कि प्रेम की स्थिति में जोर जोर से हंसते हैं, जब जोरों से हंसते हैं तभी देखते हैं कि भगवान छिप गए और भगवान उनके लीला स्मरण में भी नहीं रहे। तो जब भगवान हट गए तो ये जोर जोर से रोने लगते हैं और रो रो कर भगवान को पुकारते हैं, कृष्ण कहाँ हो, कहाँ हो, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो, तुम कहाँ चले गए, जोर जोर से रो रहे हैं। जब जोर जोर से रोना शुरू करते हैं तो भगवान कृपावश करके प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं मैं आ गया हूँ। जब भगवान कहते हैं मैं आ गया हूँ तो ये जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर गाने लगते हैं कि मेरा जीवन सिद्ध हो गया। तो इस ढंग से ये भक्तों के इस ढंग से उतार चढ़ाव आते हैं इमोशंस में, है ना। हमारे हमें ऐसा नहीं होता, हम बाबर खड़े रहते हैं, हम भी रोते हैं, हंसते हैं, चलो जल्दी करो, पेट में चूहे कूदते हैं तो रोना शुरू होता है। रूप गोस्वामी जी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी सुनते थे राधा कृष्ण की लीलाएं तो उनको इतना विरह होता था कि उनसे गर्म गर्म श्वासें निकलती थी उनकी नासिका से और वही बेहोश हो जाते थे, है ना। तो हम लोग भी सुनते सुनते बेहोश तो हो ही जाते हैं, नींद तो आ ही जाती है, लेकिन ये लक्षण होते थे, ये एक्सटेसी के लक्षण हैं। और जैसे हम देखते हैं कि श्रीवास ठाकुर जब भागवतम सुनने के लिए देवानंद पंडित भागवतम का गायन कर रहे थे तो श्रीवास ठाकुर ने भी श्लोक सुना, उनको भी एक ढंग से एक लक्षण हो गए, लेकिन उनके शिष्यों को समझ नहीं आया, बोले क्या फालतू में शोर मचा रहा है, उनको उठाकर उन्होंने बाहर फेंक दिया। इसका अपराध देवानंद पंडित को भी लगा। तो ये जो एक्सटेसी है, ये जो भाव है, ये साधारण व्यक्ति को समझ नहीं आता और इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो अभक्त होते हैं उसको समझ भी नहीं सकते। वजन हिज ग्रेस महामन प्रभु जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, राधा पारसाती मंदिर में लेक्चर दे रहे थे तो ऐसी ढंग से वो बात बता रहे थे कि भगवान राम ने, प्रभुपाद जी ने लिखा है कि समुद्र में सेतु बना दिया, तो एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था उसने बोला ये संभव ही नहीं है। तो उसने बोला क्या, क्यों, आपका क्या आर्गूमेंट है? उन्होंने ये आर्गूमेंट दिया क्योंकि भगवान राम ने सिविल इंजीनियरिंग नहीं की हुई थी। ये देखो, ये आर्गूमेंट है कि राम जी ने सिविल इंजीनियरिंग की नहीं, तो बिना सिविल इंजीनियरिंग को ये ब्रिज कैसे बना सकते हैं। तो इस तरह से ये अभक्त होते हैं, ये समझ नहीं सकते। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतु मना। जो जिनके लिए रात्रि है योगियों के लिए, भक्तों के लिए वो दिन है, और जो अब भक्तों के लिए दिन है वो उनके लिए रात्रि के समान है। इसी ढंग से हम देखते हैं हरिदास ठाकुर जी एक बार जा रहे थे मार्केट से, तो वहाँ पर एक सांप सपेरा था जो कि बीन बजा के सांप को नचा रहा था। बहुत भीड़ इकट्ठी हुई हुई थी। तो अचानक क्या हुआ, वीण बजाते बजाते जो सर्प देव थे वासुकी, वो उसके जो सपेरे के शरीर में प्रवेश कर गए, जब उसके देह में प्रवेश कर गए तो जो सपेरा था वो भगवान के कालिया दमन की लीला का वर्णन करने लगा। कालिया दमन की लीला का वर्णन करने करने करते हुए जैसे भगवान कालिया के पर नाच रहे थे वो वैसे नाचने लगा। तो भगवान ने एक देशी जीव कालिया पर ये कृपा की है, ये सुनकर हरिदास ठाकुर भावावेश में आ गए और अपने आप को रोक ना सके और जोर जोर से वो हंसने लगे, रोने लगे और मूर्छित हो गए। और उसके बाद सब लोग देखकर बड़े हैरान हो गए और फिर वो चेतना में आए और जोर जोर से नाचने लगे। तो जब उनके इस भावावेश की सुंदर स्थिति को देखा तो सभी लोगों क्या करने लगे, जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब एक शुद्ध भक्त इस ढंग से मासूम लोगों के बीच में या भक्तों के बीच में इस तरह से अपने भावावेश को प्रकट करता है तो सब लोग शुद्ध हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज बहुत ही उत्साह से स्कूल में जाते थे तो प्रहलाद महाराज ये लक्षण प्रकट करते थे तो सब के सब विद्यार्थी शुद्ध हो जाते उनके इन लक्षणों को देखकर। तो सभी लोग जो खड़े हुए थे उनको बहुत प्रभावित हुए और जब वो वापस अपनी बाहरी चेतना में आ गए तो सभी लोग उनके पांव पकड़ने गए, उनके चरणों की धूल लेने लगे। तो इसी में बीच में एक ब्राह्मण था जो कि बहुत द्वेषी था, बोले यवन परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति, उसको इतनी इसके प्रतिष्ठा, इतना लोग इसको पांव छू रहे हैं, ये क्या, मैं भी कर लेता हूँ ऐसा, है ना। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सिंह भगवान की जय। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं भी ऐसे कर लेता हूँ। तो फिर से जैसे ही वो सपेरे ने बजाना शुरू किया बीन, वो लेट गया और उसने हिलना डुलना शुरू कर दिया, नाचना गाना शुरू कर दिया। बोले बस थोड़ी देर की बात है, लोग मेरे भी पांव छुएंगे, चरणों की धूल लेंगे। जब सपेरे ने ये देखा वो वहाँ पे आ रहा, खूब लाठी से उसकी पिटाई की और पीट पीट के उसको भगा दिया। बाद में लगे वो सपेरे से पूछा भी ऐसा क्यों किया आपने उसको पीटा, के बेचारा उसको वो उसको भी लक्षण आ रहे थे। बोले सबके सब वो द्वेषी व्यक्ति था, ये सारा नकली काम था क्योंकि इसके अंदर स्वयं वासुकी जी है और ये सब नकली काम था इसलिए इसको पीटा गया। तो भक्ति सिद्धांत सरवणी महाराज इसकी टीका में बताते हैं कि एक जो द्वेषी व्यक्ति होता है वो देखता है कि कई बार जो वरिष्ठ लोग हैं उनको ऐसे भाव मिलता है, उनको ऐसी प्रतिष्ठा मिलती है तो इसलिए वो नकल मारता है। तो भक्ति में नकल बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, ऐसे पिटाई हो जाती है फिर, है ना। और नकल के लिए भी अकल चाहिए, है ना। एक बार हम कॉलेज में थे तो हमारे वो प्रोजेक्ट्स होते थे तो उसके लिए रिपोर्ट बनानी होती थी, तो एक बार हमने भी रिपोर्ट बना दी थी तो अक्सर रिपोर्ट कॉपी कर लिया करते थे तो रिपोर्ट कॉपी कर ली गई थी। तो दो सेमेस्टर होते थे, एक समर सेमेस्टर होता था, एक विंटर होता था। तो विंटर सेमेस्टर में हमने कॉपी कर ली और टेम्परेचर समर का लिख दिया 40 डिग्री सेल्सियस और सारी कैलकुलेशन करी कर दिया। बाद में बुलाया प्रोफेसर ने, बोले नकल के लिए भी अकल का कुछ तो प्रयोग किया करो यार, टेम्परेचर 40 डिग्री लिख रहे तो नकल के लिए अकल चाहिए। अच्छी बातों की हम नकल मार सकते हैं, मालूम चले सीनियर भक्त हैं, कोई अच्छे भक्त हैं, सुबह जल्दी उठते हैं इसकी नकल मारनी चाहिए, अच्छी साधना करते हैं इसकी नकल मारनी चाहिए, ये कर सकते हैं। डेली एक कम से कम 2 घंटे पढ़ते हैं इसकी नकल मारनी चाहिए, ये ना करके वो कैसे चलते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, आप ठीक हैं, सब ठीक तो है ना और किस ढंग से वो प्रसाद खाते हैं, बड़ी थाली में आता है, तो उसकी हम बाहरी जो लक्षण है उसकी नकल ज़्यादा मारते हैं तो फिर बहुत पिटाई होती है। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, हमें लग रहा नहीं हम ऐसा नहीं करते हैं लेकिन ये हम सबके अंदर घुस जाता है। बहुत ही सीनियर डिवोटी हैं वो बता रहे थे, जब वो आश्रम में आए पहले 5 साल तो सर मुड़ा दिया गया, फेफड़ा डाल दिया, पता नहीं चला क्या होगा। दूसरे 5 साल में उछल कूद में निकल गए, तीसरे 5 साल सीनियर डिवोटी सी नकल मारने में निकल गए, 15 साल के बाद मालूम चला मैंने कुछ भी नहीं किया, फालतू में नकल मारता रहा। फिर सोचो मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ। हर एक की अपनी पर्सनैलिटी है, अपना व्यक्तित्व है, उसके हिसाब से उसको अपने जीवन में इस भक्ति के नियमों को उतारना चाहिए। तो जो वास्तव में भक्त होते हैं वो आम पब्लिक में अपने इस भावेश को दिखाते नहीं हैं। जब गोदावरी नदी के तट पर रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु मिले तो उनको मिलते ही उनके अंदर भावेश प्रकट हो गया, दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन किया और जमीन पर लौटने लगे। तभी वहां पर स्मरात ब्राह्मण खड़े थे, बोले हाय हाय ये कौन है, हाँ हाँ एक सन्यासी, कैसा सन्यासी, इतनी शर्म नहीं आती, और ये कैसे, ये राज्यपाल था शूद्र, इसको आलिंगन कर लिया और क्या कर क्या रहे हैं। हम तो सारे के सम्राट ब्राह्मण तो समझ नहीं सकते। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत अपने भाव को रोका। इसी ढंग से शिला प्रभुपाद जी, शिला प्रभुपाद जब गोरखपुर में थे एक बारी और राधा माधव गा रहे थे, गाते गाते प्रभुपाद का गला अवरुद्ध हो गया, प्रभुपाद वहीं रुक गए। प्रभुपाद अपने आप को रोक लिया करते थे ना, जब उन्होंने गोविंदमादि पुरुषम सुना पहली बार तो उनको यही भाव आया, लेकिन प्रभुपाद ने अपने आप को रोक लिया। वास्तव में शुद्ध भक्तों की ये इच्छा नहीं होती, ये अभिलाषा नहीं होती हमें ऐसी एक्सटेसी आए। हम कोई भक्ति एक्सटेसी प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे कि क्या मजा आएगा प्रभु क्लास में बैठे हुए और ऐसे एकदम एकदम अचानक ऐसा कुछ हो जाए, है ना, कितना अच्छा लगेगा। वो दिन कब आएगा जब मैं भी ऐसे एक्सटेसी आ जाएगी मुझे। भक्त लोग ऐसी एक्सटेसी नहीं चाहते, बल्कि कई बार इस तरह के लक्षण उनकी सेवा में बाधा पड़ते हैं तो फिर अपने आप को डांटते हैं, उनका बहुत ही गिल्ट होता है। जैसे एक बार दारुक द्वारका में भगवान को चामा ढुला रहे थे, चामा ढुलाते ढुलाते भगवान के उन्होंने सुंदर रूप को देखा, सुंदर रूप को देखता है उनके अंदर भावेश उत्पन्न हो गया और वो कांपने लगे, उन्होंने हाथ से चामर छूट गया। लेकिन बाद में उनको ध्यान आया, अरे मैंने भगवान की सेवा सही ढंग से नहीं की, तो अपने आप को कसोटने लगे, दोबारा से चामर उठा के सेवा करने लगे। तो भगवान के शुद्ध भक्त केवल सेवा करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, ये एक्सटेसी नहीं चाहते हैं, है ना। लेकिन ये इसका साइड प्रोडक्ट है, क्योंकि हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो भगवान अपने आप हमें ये दे देते हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी बताते हैं कि गोपियां जब भगवान की सेवा में जुड़ती हैं तो गोपियों के अंदर लेश मात्र भी इच्छा नहीं होती अपने सुख को प्राप्त करने की, लेश मात्र भी। लेकिन कितनी हैरानी की बात है कि वो जो आनंद है उन पर जबरदस्ती उनको लाद दिया जाता है। गोपियां तो भगवान के सिरदर्द, एक मिनट के लिए सिरदर्द को दूर करने के लिए नरक में जाने को तैयार थे। उनको ये थोड़ी मालूम था कि हमें एक्सटेसी मिल जाएगी। अगर पहले से मालूम होता है चरणों की धूल, तो ऐसी एक्सटेसी मिल जाएगी हर कोई दे देगा, हर किसी को यही रहता नरक में जाएंगे, तो नरक में जाने का कोई डर नहीं है, ले लो धूल जो लेनी है। लेकिन भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो भक्तों को ऐसे प्रेम प्रदान करते हैं। हम लोग प्रतिदिन सुबह बोलते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम क्यों चाहिए हमें, सोचो चाहिए किसी कृष्ण, अगर हमें वास्तव में चाहिए होता हम तुरंत बोलते क्यों नहीं चाहिए, क्यों चाहिए हमें कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम से क्या हो जाएगा, स्वाभाविक स्थिति में आना क्यों चाहते हैं, हाँ हाँ जी, जन्म मरण की मुक्ति से छुट्टी मिल जाएगी, अच्छी बात, और क्या चाहते हैं, आनंद, आहा फिर तो आनंद ही आनंद प्रभु जी, कोई टेंशन नहीं, आनंद मिल जाएगा, यस। हम भगवान के दास हैं तो दास बनने से क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा उससे, हम क्यों करने की सेवा, आनंद मिल जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। हाँ हम प्रेम चाहते हैं ताकि जब हमारे पास प्रेम होगा तो भगवान को हम ज्यादा प्रसन्न कर पाएंगे। हम प्रेम अपने लिए नहीं चाहते हैं कि मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाऊंगा या मुझे आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, मैं अपने शाश्वत स्थिति में चला जाऊंगा, नहीं। हम प्रेम इसलिए चाहते हैं कि हम जितना हमारे हृदय में प्रेम होगा उतना ज्यादा हम भगवान को अपनी प्रेममय सेवा द्वारा प्रसन्न कर पाएंगे, उतना ज्यादा हम गुरु परंपरा को प्रसन्न कर पाएंगे। भगवान केवल हमारे प्रेम के भूखे हैं, जितना हमारे हृदय में प्रेम होगा भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, जब भगवान प्रसन्न होंगे तो हम अपने आप ये भाव के लक्षण उत्पन्न होंगे, फिर भगवान को और सेवा देंगे। यही तो होता है भगवान और गोपियों के बीच में, वो तो कुछ भी अभिलाषा लेकर नहीं आती, लेकिन भगवान उनके प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके हृदय में प्रेम और बढ़ जाता है, जब उनके हृदय में प्रेम बढ़ जाता है और तो सेवा और अच्छी हो जाती है, सेवा और अच्छी होती है तो भगवान और प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होते हैं और प्रेम बढ़ जाता है, तो ये स्पृधा चलती रहती है। तो कब ये हम अपने लिए प्रेम भी नहीं चाहते, हम केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रेम चाहते हैं, ये भाव हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग जो 7 डे सेशन करते हैं तो सेशन का पहला नाम क्या है, सर्च फॉर हैप्पीनेस, आनंद की खोज। अगर कोई व्यक्ति भक्ति में आनंद की खोज के लिए आया है तो खोजता ही रह जाएगा। भक्ति अगर हम अपने आनंद की खोज के लिए करेंगे तो आनंद कभी प्राप्त नहीं होगा, हम खोजते ही रह जाएंगे, जन्मों जन्म तक हम खोजते ही रह जाएंगे। क्योंकि भक्ति का मतलब है सेवा, सेवा का मतलब है अपने प्रिय को प्रसन्न करना और उसके लिए हर तरह की तकलीफों को सहने के लिए तैयार होना, यही गोपियों का भाव है। कुछ भी, नरक भी जाने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रसन्न होने चाहिए बस। तो अगर हम भक्ति में कोई भी सेवा कर रहे हैं, भक्ति का मतलब है सेवा, और सेवा में प्रभु जी हाँ जी बताइए क्या करना है, हम अक्सर अपने बारे में सोचते हैं अच्छा ये क्या होगा मेरे लिए, ठीक है कि नहीं है। तो अपने सुख की वासना भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है, हम आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। आनंद की खोज के लिए भक्ति में नहीं आना चाहिए, हम शुरू शुरू में लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, आइए आनंद की खोज, आइए आइए आपको आनंद चाहिए, आइए आइए। फिर हम बोलते हैं चैंट एंड बी हैप्पी, चैंट एंड बी हैप्पी, तो माला पकड़ते हैं चैंट एंड बी हैप्पी, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऊपर स्टार लगा होता है और नीचे स्टार के नीचे लगा होता है चैंट एंड प्लीज कृष्ण एंड बी हैप्पी। भगवान के नाम का जप करो, क्यों करो भगवान के नाम का जप करो, कृष्ण को आनंद देना है। जब तक कृष्ण को आनंद नहीं देंगे हम आनंद पा ही नहीं सकते, क्योंकि सारे आनंद के स्रोत भगवान श्री कृष्ण ही है। ये बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है, अंदर घुसती नहीं हमारे दिमाग में, कितनी बारी सुन ले कितनी बारी बोल ले, बहुत कृपा चाहिए इस। हम भगवान को बाईपास करके चैंट एंड बी हैप्पी जितना मर्जी चैंटिंग कर लें, जब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे हम प्रसन्न नहीं हो सकते, ऐसे लक्षण नहीं आ सकते, नकली मार सकते हैं। फिर हम भगवान को प्रसन्न करने करके ही, और हम जो चैंटिंग कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपना सिर दर्द दूर करने के लिए नहीं, अपनी भौतिक समस्याओं के समाधान के लिए नहीं, अपना स्ट्रेस कम करने के लिए नहीं, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं कि जितना हम भगवान के नाम लेंगे उस नाम से हमें प्रेम प्राप्त हो जाएगा। प्रेम किस लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हम श्रवण किस लिए कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, बल नहीं इसलिए नहीं। देखिए आज क्या सुनाते हैं प्रभु जी, कौन से प्रभु जी हैं, आज किसका लेक्चर है, आज नई नई बातें सुनने को मिलेंगी, इंटरेस्टिंग होगा, चलते हैं। नहीं, किस लिए सुन रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। लेक्चर दे रहे हैं किस लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। रीडिंग कर रहे हैं किस लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अर्चन कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ये बार बार हमें चेक करना चाहिए। तो इसलिए भक्त लोग कोई एक्सटेसी नहीं चाहते, वो तो केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। और इस ढंग से हम देख सकते हैं कि ये जो स्थिति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि भक्ति की तीन स्थिति हैं, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधना भक्ति की परिभाषा वो देते हैं, ऐसी क्रियाएं जिनके द्वारा हम भाव भक्ति की स्टेज पर आए, और भाव भक्ति की स्टेज पर मनुष्य का हृदय बहुत कोमल हो जाता है, सॉफ्ट द्रवित हो जाता है, और जैसे ही वो भगवान का नाम सुनता है, भगवान की लीलाएं सुनता है, उसके हृदय को छूता है, और बस उसके अंदर लक्षण आएंगे ही आएंगे। ये लक्षण तब प्रकट होंगे जब हमारे हृदय में स्थित आत्मा को छुआ जाएगा। ये आत्मा की एक्सटेसी है, आत्मा हमेशा ही एक्सटेसी में रहती है, और भौतिक जगत उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। एक्सटेसी उसकी नॉर्मल स्थिति है, आत्मा की खुराक ही एक्सटेसी है, आत्मा ऐसे ही रहती है हमेशा। तो जैसे ही भगवान का नाम और कीर्तन सुना, भगवान की लीलाएं सुनी, एक्सटेसी में आ गए बस। तो वो कब होगा, जब भाव की स्थिति में होता है। भाव की स्थिति में भक्त भगवान के दर्शन कर सकता है, भाव की स्थिति में असली सेवा शुरू होती है, क्योंकि वो तीन गुणों से मुक्त हो जाता है और फिर सेवा प्रारंभ होती है, संबंध स्थापित होना शुरू हो जाता है। ये भाव की स्थिति है जो प्रेम से बिल्कुल पहले है। तो भाव तक कैसे पहुंचेंगे, सीधा पहुंच सकते हैं भाव तक, कैसे पहुंचेंगे, साधना भक्ति। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, साधना भक्ति, यानी कि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं साधना भक्ति के अंदर हृदय का परिवर्तन होना अनिवार्य है। जब तक साधना भक्ति के दौरान हृदय में परिवर्तन नहीं होगा तो भाव भक्ति स्टेज में कैसे पहुंच जाएंगे। हार्ट हैज टू चेंज, साधना भक्ति में इतनी शक्ति है, भक्ति में बहुत शक्ति है, इस भक्ति की शक्ति के द्वारा हमें अपने हृदय को बदलना होगा, इस हृदय को कोमल करना होगा। जब ये हृदय कोमल नहीं होगा ये सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, कठोर हृदय से थोड़ी भक्ति होती है। भक्ति सिद्धांत साहिब ठाकुर महाराज कहते हैं परम सत्य को जाने के लिए हृदय मजबूत होना चाहिए और कोमल होना चाहिए। मजबूत के साथ साथ कोमल, कोमल हृदय कैसे होगा, जैसे हम देखते हैं वो प्रभुपाद जी की स्टोरी कई बार हम सुनी है, नारद मुनि आते हैं मोची के पास और ब्राह्मण के पास, है ना, और भगवान से पूछ के आओ हम कब वापस आएंगे। ब्राह्मण को बताते हैं भगवान क्या कर रहे थे, उसने पूछा, बोले सुई में से हाथी निकाल रहे थे। वो ब्राह्मण श्लोकों को बहुत अच्छे ढंग से जानता था, बोले क्या मजाक करे नारद मुनि, कोई और मिला नहीं कि अभी आपको बनाने वाला, चलो आगे जाओ, सब वेदों को पढ़ा हुआ है मैंने, ऐसी कोई लीला है ही नहीं भगवान के सुई के छेद में से हाथी निकाल रहे, चलो चला गया। और जब मोची को बताया, मोची भावेश होकर नाचने लगा, तो बोला अरे क्यों पागल हो, कभी हो सकता है ये, क्यों नहीं हो सकता, इस बरगद के इतने बड़े पेड़ को जब भगवान छोटे से बीच में डाल सकते हैं तो क्या सुई के छेद से हाथी नहीं निकाल सकते, भगवान के लिए क्या असंभव है। तो इस जंग की जब श्रद्धा देखी तो निश्चित रूप से वो भगवत धाम वापिस जाएगा, है ना। तो उस मोची का हृदय बहुत कोमल था और इस ब्राह्मण का हृदय बहुत कठोर। इसी तरह देखते हैं भाग कृष्णा पुस्तक में हम देखते हैं वो याज्ञिक ब्राह्मण, कृष्ण बलराम ने अपने गोपों को भेजा जाके मांग के लाओ, साक्षात बोल रहे हैं बलराम और कृष्ण आपसे मांग रहे हैं इतनी बड़ी अवसर आपको सेवा करने का, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कहां से आ गए गवार लोग, इनको पता ही नहीं क्या है, हम लोग इतने बड़े वेदों का उच्चारण कर रहे हैं, ये क्या है बीच में आ गए, चल ध्यान ही नहीं दिया, बेचारे वापिस चले गए। और जब उनकी पत्नियों के पास आए भाग कर गए, बाद में अपने आप को सोने लगे, अरे धिक्कार है हमारे ज्ञान को, धिक्कार है हमारे विधि अनुष्ठानों को, धिक्कार है हमारी तपस्याओं को। हृदय कठोर होने से भक्ति नहीं हो सकती। हृदय कठोर क्यों होता है, जितना हमारे अंदर भोगने की प्रवृत्ति होगी, जितना केवल मैं और मेरे में ही फंसा रहेंगे उतना हृदय कठोर होगा, और जितना हम दूसरों के लिए जिएंगे। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में जब ये बता रहे हैं कि कैसे छह शत्रुओं से मुक्त होना है, तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सबसे पहले हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए और शास्त्रों का आदेशन पालन करते हुए शिष्य भक्ति प्राप्त करता है और संपत्ति से अनासक्त हो जाता है। उसके पास जो भी संपत्ति है पोजिशन से उससे वो डिटैच हो जाता है। कैसे, उसके पास जो कुछ होता है उसे वह अपने गुरु को अर्पित कर देता है। जितना हम संभाल के रखेंगे ये मेरा मैं और मेरा, वो हृदय कठोर होता है, इसमें भोगने की प्रवृत्ति होती है। और जितना हम सब कुछ वैष्णव और गुरु को दे देंगे तभी हम श्रवण कीर्तन कर पाएंगे। वह उसे श्रवण कीर्तन विष्णु प्रवर करता है और शिष्य दृढ़ता पूर्वक आज्ञा पालन करके अपने इंद्रियों को वश में करना सीखता है। फिर अपनी शुद्ध भक्ति का प्रयोग करके वह धीरे धीरे पूर्ण प्रशांत भगवान के प्रेमी बन जाता है। ठीक है ना। तो दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सब कुछ समर्पित करने का प्रयास करना चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि जो लोग ब्रह्मचारी पर उन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया, समर्पण बहुत बहुत लंबी वो है। तो सब कुछ हमें, जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से, तब तक ये अहंकार नहीं जाएगा, झूठा अहंकार। तो इससे ये जो हृदय तभी कोमल होगा, जब तक हमारे अंदर भोगने की प्रवृत्ति है हम इन बातों को, सूक्ष्म वस्तुओं को नहीं समझ सकते। तो इस साधना भक्ति हमें इस जंग से करनी है कि हम अपने हृदय को कोमल कर सके और भाव की स्थिति में आ सके हम। तो इसलिए भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान उद्धव को बताते हैं कि हृदय कोमल कैसे होता है। सुनना चाहेंगे आप, हैं? बता रहे हैं, कथम विना रोम हर्षम द्रवता चेतसा विना विना नंदा शुक कल्या शुद्धये भक्तया विनाशया 11:14-23। यदि किसी को रोमांच नहीं होता, आपका है स्थिति रोमांच नहीं होता, सुनिए, तो हृदय कैसे द्रवित हो सकता है, और यदि हृदय द्रवित नहीं होता तो आंखों में प्रेमाश्रु कैसे बह सकते हैं, और यदि कोई आध्यात्मिक सुख में गिड़गड़ाए नहीं तो वह भगवान की प्रेमा भक्ति कैसे कर सकता है, और ऐसी सेवा के बिना चेतना कैसे शुद्ध बन सकती है। रोमांच नहीं होगा, हृदय द्रवित नहीं होगा, आंसू नहीं बहाएंगे, गिड़गड़ाएंगे नहीं, तो भगवान की क्या प्रेमा सेवा हो सकती है। नकली आंसुओं से, नकली गिड़गड़ाने से काम नहीं, वास्तव में हृदय से। तो कैसे होगा, तात्पर्य बताया जा रहा है कि भगवान की लीलाओं में एब्जॉर्ब हो जाएं, सुनने में, सेवा में पूरे हृदय को दे दें। ये है सब कुछ समर्पित करना गुरु को, पूरे हृदय से सेवा में जुड़ जाना, तब जाके ये हृदय पिघलेगा। ऐसे नहीं होगा तब जाके होगा। और अभी क्या स्थिति है, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को, निश्चय ही वह हृदय फौलाद का बना हुआ है जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पे भी नहीं बदलता। जब हर्ष होता है तो आंखों में आंसू नहीं भर आते और शरीर के रोम रोम खड़े नहीं हो जाते, रोज चैंटिंग करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। होता किसी को, किसी को होता है? इसका मतलब क्या है? हृदय फौलाद का है। फौलाद का मतलब स्टील फ्रेम्ड हृदय है हमारा, हमने अंदर से स्पेशल सर्जरी करा रखी है। आजकल लोग स्टंट भी डालते हैं, है ना, कुछ मेटल के स्टंट भी डालते हैं और वाल्व भी डालते हैं कुछ, लेकिन हमने क्या किया, स्टील फ्रेम करा रखा है कि ठक जो भी नाम भी आता लीला होता वापस चला जाता, टन करके वापस चला जाता, अंदर घुस ही नहीं पाता। स्टील फ्रेम फौलाद का हृदय, बहुत ही जगह तुम बोलेंगे बड़ा क्या बंदा है, क्या सॉलिड हृदय है इसका, फौलादी हृदय वाला, लेकिन अध्यात्म बिल्कुल उसकी निंदा की गई है, फौलादी हृदय है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये फौलादी हृदय क्यों होता है, और हम आपको एज इट इज पढ़ के सुनाना चाहेंगे। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि नियमित भक्ति में सेवा करने से हृदय में परिवर्तन अवश्य दिखना चाहिए, ऐसी अपेक्षा की जाती है। यदि ऐसा परिवर्तन नहीं आता, नहीं आ रहा भी हमारे में, तो समझना चाहिए कि हृदय फौलाद का बना है, क्योंकि भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण किए जाने पर भी यह नहीं पिघलता। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भक्ति में कार्यों को संपन्न करने में श्रवण तथा कीर्तन दो मूलभूत सिद्धांत हैं, और यदि इन्हें ठीक से संपन्न किया जाए तो इससे हर्ष उत्पन्न होगा जो आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच द्वारा लक्षित होगा। ये स्वाभाविक परिणाम है और भाव दशा के प्रारंभिक लक्षण हैं, जो प्रेम या भगवत प्रेम की पूर्ण अवस्था प्राप्त होने के पूर्व प्रकट होते हैं। यदि भगवान के पवित्र नाम के निरंतर श्रवण और कीर्तन से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, बोले हम तो लोग बहुत करते हैं, प्रभु जी 64 माला भी कर लेते हैं कई बार, और कई बार लेक्चर सुने हमने, आईपॉड पे भी सुनते हैं, लाइव भी सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, प्रभु जी कुछ नहीं हो रहा। आगे बता रहे हैं, यदि भगवान के पवित्र नाम के निरंतर श्रवण तथा कीर्तन से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो यह समझना चाहिए ये केवल अपराध के कारण है। यही संदर्भ का अभिमत है। भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण प्रारंभ करते समय यदि भक्त पवित्र नाम के चरणों पर 10 प्रकार के अपराधों से बचने के लिए सावधान नहीं रहता तो ये निश्चित माने कि विरह की भावना आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच के रूप में प्रकट नहीं होंगी। और इसमें आगे फिर बताया जा रहा है, आगे लास्ट पैराग्राफ, संपूर्ण प्रक्रिया को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है। पूर्ण रूप से निरपराध होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करने वाला तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मैत्री भाव रखने वाला प्रगत भक्त ही वास्तव में भगवान के यशोगान का दिव्य आस्वादन कर सकता है। किसके अंदर ये लक्षण उत्पन्न होंगे? दो कंडीशंस बताई, क्या क्या? मैत्री भाव रखना है भक्तों के प्रति और निरपराध होकर भगवान के नाम का जप करना है। ऐसी अनुभूति का परिणाम समस्त भौतिक इच्छाओं की समाप्ति द्वारा परिलक्षित होगा, जैसा कि ऊपर कहा चुका है। नौसिखिए भक्त भक्ति की निम्नतर अवस्था में रहने के कारण ईर्ष्यालु होते हैं, ये हमारी समस्या बताई गई है। हमारे में क्यों नहीं लक्षण उत्पन्न हो रहे? क्योंकि अभी हम कनिष्ठ अधिकारी के अधिकांशतः हैं, बुरा मत मानिए, तो हमारे अंदर ईर्ष्या है और अपने आचार्यों का अनुगमन ना करके स्वयं भक्ति के विधि विधानों का आविष्कार करते हैं। आचार्यों की बात नहीं मानते, अपना अलग मॉर्निंग प्रोग्राम बनाते हैं, अपनी अलग साधना का आविष्कार करते हैं, है ना। प्रभुपाद के ग्रंथ थोड़ा सा पढ़ लिए, बाकी कुछ बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे। ये भक्ति सिद्धांत सेवक ठाकुर महाराज बहुत स्ट्रिक्ट थे इस मामले में। वो बोलते हैं अपने हृदय को शुद्ध करना है, आप अनर्थ निवृत्ति भी करो और अर्थ प्रवृत्ति भी करो। अर्थ प्रवृत्ति के लिए भगवान की लीलाओं को सुनो उनके शुद्ध भक्तों के साथ, गोपुर गोपियों के साथ, लेकिन प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में सुनो। स्वतंत्र होकर अगर कोई अपना ही आविष्कार करता है तो ईर्ष्या के कारण है ये। आगे सुनो, फलस्वरूप वे कितना ही भगवान नाम के जप का प्रदर्शन क्यों ना करे, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने ही साधना का आविष्कार किया हुआ है वो कितना ही निरंतर भगवान नाम का जप क्यों ना करे, वे पवित्र नाम के दिव्य आस्वाद प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अतएव आंखों में आंसू आना, कांपना, पसीजना या मूर्छित होना, इन सब की भर्त्सना की जाती है। हाँ, वे भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति करके अपनी बुरी आदतों को सुधार सकते हैं, अन्यथा वे पाषाण हृदय बने रहेंगे और किसी भी उपचार के योग्य नहीं हो सकेंगे, फिर उनको ठीक नहीं किया जा सकता। जो आचार्यों के नियमों के अनुसार नहीं चलते, अपना आविष्कार कर लेते हैं और दिखाने के लिए निरंतर जप कर रहे हैं या निरंतर शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, बिना आचार्यों की कृपा के, बिना आचार्यों की आज्ञा के, मार्ग निर्देशन के, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यहाँ साफ साफ प्रभुपाद कह रहे हैं, वो वास्तविक में शुद्ध भक्तों की शरण में जा सकते हैं और अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो उनके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है फिर। तो ये बातें हैं, ये भक्ति में, भक्ति बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, ये हमसे गलतियां होती हैं इसलिए प्रारंभिक अवस्था में। तो ये आचार्य गुरु परंपरा को पालन करने का बहुत महत्व बताया गया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक आता है भागवतम तीसरे स्कंद में, जो कि जब विदुर हरिद्वार में जाते हैं मैत्रेय मुनि से मिलने, तो वो बता रहे हैं कि ये जो आनंद है, ये सुख है, दो तरह के लोगों को मिल सकता है। सुनना चाहेंगे कौन से दो तरह के लोग हैं? बोले, यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परम गता ताव भुवो सुख मेघे ते क्लिश्यन्ते अंतरितो जना। या तो वो निपट मूर्ख हो, मूढ़तमा, लोएस्ट ऑफ द फूल्स, मूर्खों से मूर्ख व्यक्ति, या फिर परम हंस, वो ही सुखी रह सकते हैं। जो बीच के लोग हैं हम जैसे, वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। ये विदुर जी कह रहे हैं, या तो बिल्कुल पशु की तरह मूर्ख व्यक्ति, या फिर परम हंस, वो सुखी रह सकते हैं। जो हमारे बीच के अंदर रुका हुआ है बेचारा, साधना कर रहा है, वो उसको बहुत क्लेश सहने पड़ते हैं। जो मूर्ख व्यक्ति क्यों प्रसन्न रहता है, उसको लगता ही नहीं मैं दुखी हूं। सुअर को लगेगा दुखी है, सुअर मल खा रहा है, मैथुन कर रहा है, इससे बड़ी ऐश ही नहीं है। कहीं कॉलेज, आईआईटी कॉलेज में नहीं जाना, कोई कंपटीशन में नहीं जाना, कोई फैक्ट्री में नहीं जाना, कोई कंप्यूटर पर नहीं बैठना, कोई चश्मा नहीं लगा, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, कोई हार्ट डिजीज नहीं, कोई आर्टरी ब्लॉक नहीं हो रही, फर्स्ट क्लास ऐश। सुअर को ऐश है, ऐसी वो व्यक्ति कहता है बिल्कुल ऐश है, क्या दिक्कत, क्या क्या प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ लाइफ, अपना तो एक ही असूल है, खुश रहो, पार्ट ऑफ लाइफ। वास्तव में खुश है मूढ़ व्यक्ति, और या फिर परमहंस, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जो बीच में फंसा हुआ व्यक्ति है, प्रभुपाद कहते हैं वो कैसे बेचारा दुखों को निपटारा करे, इस बीच में दुखे हुए व्यक्ति को, क्योंकि जो पशु समान व्यक्ति है वो तो पूछता नहीं जीवन की क्या समस्या है, तो इस बीच में फंसे हुए व्यक्ति को पूछना चाहिए जीवन की क्या समस्या है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसको ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। हमारी अक्सर जिज्ञासा क्या होती है कि मेरा सुख कहां है, ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ है कि परम ब्रह्म का सुख कहां है, समझे, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ हम समझते हैं, हो तो गई ब्रह्म जिज्ञासा, कितनी बारी करेंगे भाई, पता कर लिया ना मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, मैं उनका अंश ही हूं ना, यही बताना चाहते हो, पार्ट एंड पार्सल हूं, और क्या है, सब कारण में कारण है ना वो, ठीक है और बताओ, तीन प्रकृतियां सब मालूम है, अब क्या जिज्ञासा करूं, बार बार बोल रहे था तो ब्रह्म जिज्ञासा क्या करूं। अरे जिज्ञासा ये करो कि ब्रह्म को कैसे प्रसन्न कर सके, कैसे संबंध स्थापित कर सके, ये जिज्ञासा खत्म नहीं होती। हर कार्य में हमारे में जिज्ञासा होनी चाहिए कि क्या ये गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करेगा, ये जिज्ञासा, ये था तो ब्रह्म जिज्ञासा है। हमारी जिज्ञासा क्या होती है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, हर कार्य में मेरा क्या लाभ होगा, तभी करेंगे, तभी सारे के सारे दुख हमें सताते हैं, तो तभी इसका निवारण हो सकता है। तो इसका उपाय क्या बता रहे हैं, इसका उपाय बता रहे हैं, यत सेवया भगवता कूटस्तस्य मधुद्विषा रति रासो भवेत्रिव पादव्यस्य सनार्दना। रति अगर चाहिए और रस चाहिए तो गुरु की सेवा में जुड़ना पड़ेगा। प्रामाणिक गुरु की सेवा में जुड़ते ही ये सारी की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो हम लोग जिस प्रामाणिक गुरु संप्रदाय से जुड़े हैं हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण एक तमाल वृक्ष के समान है और श्रीमती राधा रानी एक बेल के समान है। ये बेल पूरी तमाल वृक्ष के आसपास लपेटी हुई है और इस बेल के ऊपर जो फूल आ रहे हैं वो गोपियां और मंजरियों के समान है। तो गोपियां कभी भी डायरेक्टली कृष्ण के संपर्क में नहीं आते और जो राधा रानी भगवान की सेवा करती हैं उनको जो भाव प्राप्त होता है, जो एक्सटेसी प्राप्त होती है, वो अपने गोपियों और मंजरियों के साथ नीचे नीचे पूरा शेयर किया जाता है, एज इट इज इनफैक्ट बढ़ बढ़ के जाता है। तो ये हमारी गुरु परंपरा है। और जब राधा रानी के इसी भाव का आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं और यही राधा रानी का भाव का आस्वादन भी करते हैं और हम सब बद जीवों को बांटते भी हैं, ये कितना बड़ा सौभाग्य है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर अवतरित हुए हैं ये उन्नत उज्ज्वल रस बांटने के लिए। और वो उन्नत उज्ज्वल रस हमें प्रमाणिक गुरु परंपरा से प्राप्त हो रहा है। ये जितनी भी गोपियां भगवान की अंतरंग सखियां हैं, ललिता सखी, विशाखा सखी, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर और सारी की सारी अष्टमंजरियां, सारे छह गोस्वामी, कृष्णदास कविराज जी, लोकनाथ गोस्वामी जी और उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित और उससे होते होते पूरे जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्तिनाथ ठाकुर जी, गोरक्षदास बाबा, भक्ति संसद ठाकुर प्रभुपाद आ रही है परंपरा। क्या सारी परंपरा आ रही है और ये हमें वो रस प्राप्त हो सकता है। और इस उस भाव को प्राप्त करने की योग्यता क्या है कि हमें बहुत विनम्रता के साथ इसको स्वीकार करना है। पिछले श्लोकों में प्रहलाद महाराज ने पूरी स्थिति दी कि कैसे श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और फिर रुचि आसक्ति भाव, ये भाव के श्लोक हैं। तो अगला श्लोक भी इसी तरह का वर्णन करता है। तो 33 नंबर श्लोक में, 32 नंबर श्लोक में जो शायद नवलोचन प्रभु ने लिया था उसमें बताया जा रहा है कि मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, उनके अंतर्यामी प्रतिनिधि स्वरूप परमात्मा को सदैव स्मरण करे। जो व्यक्ति जीव के अंतर्गण में स्थित है इस प्रकार उसे जीव की स्थिति या स्वरूप के अनुसार प्रत्येक जीव का आदर करना चाहिए, प्रत्येक जीव का आदर करना चाहिए। तो ये कौन सा श्लोक हुआ? त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो ये निष्ठा का स्टेज है। अगले श्लोक में बताया गया कैसे उसकी आसक्ति हो रही है, रुचि हो रही है कि सारे के सारे अनर्थ खत्म हो गए, ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरी, कविता माँ जगदीश काम भई है, और वो भगवान की सेवा में आसक्त हो गया। और ये अब भाव की स्थिति बताई जा रही है। तो जब तक हम इन स्थितियों से नहीं गुजरेंगे, जब तक हम सबका सेवा में नहीं जुड़ेंगे, अपने आप को अपने दास नहीं मानेंगे, तब तक ये भाव प्राप्त नहीं हो सकता। ये जो भाव पूरी गुरु परंपरा से जो आ रहा है, ये अगर हम अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाएंगे उससे प्राप्त नहीं होगा। जब हम बहुत विनम्र भक्त बनने का प्रयास कर रहे होंगे तब ये प्राप्त होगा। और ये प्रमाणिक गुरु परंपरा से, ये हमारा कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि हमें ये अवसर प्रदान हो रहा है। और अगर हम इन बातों को ऐसे ही ले लेंगे, हाँ बहुत सुना है प्रभु हर बार ऐसे ही कहते हैं, हमें मालूम है, नहीं होता नहीं है ऐसा, हमें अगर हमारे अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट्स बैठे हुए हैं तो ठीक है, तो वो सुनते रहेंगे लेकिन ये सब भाव की बातें किताबों में ही रह जाएंगे। और धीरे धीरे क्या होगा, क्या है यार प्रभुपाद पता नहीं क्या लिखते रहते हैं, हमारा विश्वास कम हो जाता है। होता तो है नहीं है, किसको होता है, हमने देखा भी नहीं है ऐसे ही, ये सब प्रैक्टिकल नहीं है। और फिर अपना हम श्रद्धा खो बैठते हैं और फिर क्या आनंद आएगा, कोई आनंद नहीं आएगा। तो ये बातें वास्तव में सत्य है और हम इसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप में से कोई पूछ सकता है, प्रभु जी इस कौन में इतने बड़े बड़े भक्त हैं, हमने तो किसी को देखा नहीं भागवतम क्लास में ऐसे नाचते हुए, कूदते हुए, रोते हुए, क्या इस कौन में कोई भी ऐसा भक्त है कि नहीं है इस समय, क्या कहना आप में? ये सहजिया थोड़ी, हम कुछ तो लक्षण दिखाएं भाई, कभी कभी तो लक्षण दिखा दें। लक्षण पकड़ नहीं करते तो हम कैसे समझ पाएंगे कि वो भाव की स्थिति में है? भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है, 18वां चैप्टर है, कि भाव भक्ति के लक्षण, उसमें 9 लक्षण बताए गए। तो हमारे जितने भी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, चाहे हिजोलिनस जयप्रकाश स्वामी महाराज जी हों, हिजोलिनस राधा गोविंद स्वामी महाराज जी हों, हिजोलिनस राधानाथ स्वामी महाराज हों, हिजोलिनस भक्ति चारू स्वामी महाराज हों, और भी जितने गुरु हैं, हिजोलिनस गोपाल शंकर स्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, हम कितने गुरुओं का नाम लें, और भी ऐसे नहीं जो केवल गोस्वामी हैं, माता जी लोग हैं, ग्रस्त भक्त हैं, जो प्रभुपाद जी इन्होंने बहुत अंतरंग सेवा की है, उनको एक कृपा प्राप्त हुई है, और हम देख सकते हैं अगर वो 9 भावों के लक्षणों को आप पढ़ेंगे, सारे के सारे लक्षण उनमें अभी भी विद्यमान है। अव्यर्थ कालत्व, वो एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाते। विरक्ति, पूर्ण रूप से विरक्ति है। आशा बंद, हर स्थिति में उम्मीद रहती है कि मुझे कृपा प्राप्त होगी। और मान शून्यता, कोई मान नहीं चाहिए। नाम गाने सदा रुचि, जयप्रकाश स्वामी महाराज इस अवस्था में भी ट्रेवल करते हैं, राधा गोविंद महाराज इस अवस्था में भी कथा करते हैं, शारीरिक कोई उनको शारीरिक बंधन वो नहीं है। इस ढंग से उनके हम देखेंगे 9 लक्षण हैं, और ये सभी जो प्रभुपाद के शिष्य हैं ये सारे 9 लक्षण दिखाते हैं। गर्व होना चाहिए हमें, और अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हम इन भक्तों के संरक्षण में हैं, लेकिन हम इनका कितना लाभ उठा पाते हैं ये हमारे ऊपर है। और जैसे प्रभुपाद दूसरे स्कंद के तात्पर्य बता रहे थे, प्रारंभिक अवस्था में भक्त ईर्ष्यालु होता है, ईर्ष्या के कारण सब कुछ समाप्त हो जाता है, ज्ञान प्रवेश नहीं करता ईर्ष्या के कारण, वहीं पे रुक जाता है। हम किसी को सम्मान नहीं देते और ईर्ष्या रखते हैं, वहीं पे सब कुछ रुक जाता है, और इसलिए फिर हमें लगता है कि प्रोसेस काम नहीं कर रहा। लेकिन हम सब भक्तों से मैत्री करने का भाव रखें और अपने आप को पहचाने, हाँ मेरे में ये कमियां हैं, और फिर मेहनत करें, तो निश्चित रूप से हम इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है, प्रमाणिक शास्त्र हैं, प्रमाणिक गुरु हैं, अनुकूल परिस्थितियां हैं, मनुष्य देह है, और क्या चाहिए। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है, तो हम भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला है ये संस्था बनाई गई है महाजनों को बनाने के लिए। तो उन्होंने बोला, एक शिष्य ने जब सुना, प्रभुपाद 12 महाजन थे एंड यू आर द 13th, एंड प्रभुपाद ने बोला यू आर 14th। महाजन बनाने के लिए हम सबको महाजन बनना है। बोले मैं नहीं प्रभु जी, मैं नहीं, वो हम नहीं बनेंगे, गुरु परंपरा बनाएगी अगर हम अपने आप को उनको समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथा श्रीमद्भागवतम के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के निधाय गौर प्रेमानंद।